प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है श्रोताओं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपको निश्चय ही प्रेरणा मिल रही होगी। तो आइए श्रोताओं, इससे पहले कि हम आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां रे डगर पे हो आंधियां कहीं, अंधिया रे डगर पे हो आंधियां कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है, हम तो जल जलमा जिंदगी हमारी यीशु के दिए, जलमा जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो, प्रेम की जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं, और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम इन दिनों बाइबल में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इसके परिचय और उसके चार पत्तक का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम में से हर एक के जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से हर एक को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं समझ सकें, ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में लागू करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी प्रकार के दबाव में हैं, कष्ट में हैं, बीमारी में हैं, पिताजी आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, अपनी शांति और आनंद उनके जीवन में प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सुलेमान इस पुस्तक का लेखक है, और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि सुलेमान वैज्ञानिक प्रयोग करता है, और पद 5-7 में वह अत्यधिक रोचक बातों को हमें बताता है। तो इसलिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए सबोपदेशक के पुस्तक 1:5-9 पद को हम पढ़ेंगे। 1:5-9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। यहाँ पर सुलेमान कहता है सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है। वह प्रकृति की एक रूपता है, परंतु आप इस पर निर्भर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, परंतु हम उसकी व्याख्या इन शब्दों से ही करते हैं। हम ठोस पृथ्वी पर हैं, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि सूर्य नियमों का पालन करते हुए उदय होता है और अस्त भी होता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। आज हम जानते हैं कि वायु का एक नियम है। हमारे आधुनिक उपकरणों की सहायता से भी हम मौसम का पूर्व अनुमान लगा नहीं पाते हैं। योहन्ना रचित सुसमाचार 3:8 पद में प्रभु यीशु ने कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता है कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जी हाँ, हम नहीं कह सकते कि वह कहां से आती है और कहां को जाती है। मौसम के विशेषज्ञ कहते हैं कि यहां कम दबाव है और वहां अधिक दबाव है। हवा जहां चाहती है वहां चलती है। सुलेमान कहता है कि हवा दक्षिण की ओर जाती है और घूमकर उत्तर की ओर आती है। हवा नियमों का पालन करके ही बहती है। सुलेमान ने यह कैसे जाना? उसके पास तो आधुनिक उपकरण भी नहीं थे और न ही आज जैसे उसके पास में जानकारियां थी, परंतु उसने इस बात को कहा है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। सुलेमान बाष्पीकरण के नियम को बताता है कि समुद्र से नमी उठकर हवा में आती है और हवा के साथ भूमि पर आकर बरसती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में नियमों का पालन किया जाता है। इसमें कुछ भी अव्यवस्था नहीं है, जबकि हमें ऐसा प्रतीत होता है। पद 4-7 तक प्रकृति के नियम दिए गए हैं जो आज मनुष्य के ज्ञान के अनुरूप है। इसकी तुलना आप ईसा पूर्व हजारों वर्ष के लेखों से करें तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन की सिद्धता के सामने वे झूठे निष्कर्ष और अंधविश्वास हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 1:8 पद में हम पढ़ते हैं, सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। मेरे मित्रों, पहले तो यह बात उचित नहीं लगती थी, परंतु टीवी के आने से यह सच सिद्ध होती है। लोग घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आंखें तृप्त नहीं होती और कान सुन सुन कर भी थकते नहीं हैं। हमें नए नए स्थानों पर जाना और नए नए दृश्य देखना अच्छा लगता है। यह जीवन का मनोरंजन है। हम एक अति सुंदर देश में रहते हैं, वरन एक मनोरम जगत में है। मनुष्य ब्रह्मांड की खोज से तृप्त नहीं होता है। मनुष्य जितना अधिक सीखता है उतना ही अधिक सीखने की लालसा उसमें भड़कती है। यह निराशजनक है क्योंकि अकिंचन मानव के लिए यह जगत बहुत बड़ा है, परंतु केवल मनुष्य ही है जो इस जगत को समझ सकता है। कुत्ता चांद को देखता है तो उसकी दूरी का अनुमान नहीं लगा सकता। मेरे विचार में तो उसे इसकी चिंता भी नहीं है। वह तो यह भी नहीं जानता कि वह कितने बड़े ब्रह्मांड में रहता है। उसका संसार तो एक हड्डी के बराबर ही है, परंतु मनुष्य की आंखें और उसके कान कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। उसे खोज करने की लालसा बनी रहती है। सबोपदेशक की पुस्तक एक अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। किसी नए उपकरण को बनाकर हम सोचते हैं कि हमने कुछ नई खोज की है। जब टेलीफोन आए तब वह एक बहुत बड़ी बात थी। आज टीवी है तो आप कैसे कहेंगे कि वह सूर्य के नीचे कोई नई वस्तु है? मेरे दादा की भेंट जब मेरी दादी से हुई थी तब वे घोड़ा गाड़ी में थे। मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को ट्रेन में देखा था और मैं अपनी पत्नी को रिक्शे में देखा। मेरा बेटा शायद हवाई जहाज में या अंतरिक्ष यान में अपनी होने वाली पत्नी से भेंट करेगा। आप पूछेंगे कि क्या यह नया है? जी नहीं, कुछ भी नहीं। सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। वातावरण बदल जाएगा, नए नए उपकरण आ जाएंगे, परंतु सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं होगा। मनुष्य वही है और वही रहेगा। परिस्थितियां बदलती जाएंगी। परमाणु बम को नया कहते हैं, परंतु परमाणु तो आरंभ ही से है। वह तो मनुष्य से भी प्राचीन है, जबकि मनुष्य को उसका ज्ञान भी नहीं था। मनुष्य के लिए उचित है कि वह शेर को सोने दे। अब आप कहेंगे कि कंप्यूटर नया है। नहीं, परमेश्वर ने हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर बनाया है और बिजली के समान तंत्रिका तंत्र दिया है। मनुष्य ने जान लिया है कि कुछ भी नया नहीं है। एक नई बात है, नया जन्म। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पर आपको नया जन्म प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, एकमात्र यही नया है जो आपके जीवन में शांति और आनंद भर देता है। सबोपदेशक की पुस्तक एक अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। विज्ञान के अध्ययन में संतोष खोजने के बाद सुलेमान ने यह निष्कर्ष निकाला था, मनुष्य संसार में कुछ भी करके अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है, परंतु समय नहीं लगता कि वह दृश्य से ओझल हो जाता है। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा। क्या आपको 50 वर्ष पूर्व के सिनेमा सितारे, 50 वर्ष पूर्व के खिलाड़ी स्मरण है? हमारी स्मरण शक्ति बहुत क्षीण है। 50 वर्ष पूर्व की बातें हमें स्मरण नहीं रहती हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर एक कहानी है जिसे हम दोहरा नहीं सकते हैं। सुलेमान जीवन की प्रयोगशाला में अद्भुत प्रयोग कर रहा है। वह मनुष्य के पास जो भी है उसको काम में ला रहा है। वह इस योग्य था कि किसी भी क्षेत्र में प्रयोग करे। आज के मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है। पहले तो उसने प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया, परंतु उसने विज्ञान में भी नई बात नहीं देखी, अर्थात नया जीवन पाने वाली बात। सुलेमान का अगला चरण है ज्ञान एवं दर्शन शास्त्र। ज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, आइए आप मेरे साथ सवोपदेशक एक अध्याय उसके 12 और 13 पद को पढ़िए। लिखा है, मैं उपदेशक यरूशलेम में इसराइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगें। सुलेमान ने संसार के दर्शन शास्त्र के अध्ययन में बहुत समय लगाया। वह प्रभु यीशु से लगभग 1000 वर्ष पूर्व रहा था और आज प्रभु यीशु के 2000 वर्ष बाद हम सुलेमान से 3000 वर्ष आगे हैं। परंतु तत्व ज्ञान अर्थात दर्शन शास्त्र और बुद्धिमानी में मनुष्य उससे आगे नहीं निकल सकता, चाहे हमारे पास कितने भी आधुनिक साधन क्यों ना हो। न तो बुद्धि में न तत्व ज्ञान में विकास हुआ है और न ही उससे मन का संतोष प्राप्त हुआ है। कई लोग इसको पाने की इच्छा तो रखते हैं परंतु प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सवोपदेशक के पुस्तक 1 अध्याय के 14 पद में लिखा है, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, संपूर्ण दर्शन शास्त्र बंद गली में पहुंचाता है। आप भी वे सब प्रयोग करके देख सकते हैं या देख लें, समय व्यतीत करके भी आप देख लें, आपका निष्कर्ष भी यही होगा कि सब व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। आज शिक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि पुरानी शिक्षा प्रणाली समय को गंवाना था और मैं देखता हूं कि आज की शिक्षा पद्धति भी समय गंवाना है। मनुष्य मुख्य बात कभी भी नहीं सीख सकता है। तत्व ज्ञान और बुद्धि को प्रयोग से मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता है। परमेश्वर का ज्ञान उसे केवल प्रकाशन से ही प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान से मनुष्य निराशावादी बनता जाता है। मेरे मित्रों, पाप परमेश्वर से रहित मनुष्य को शिक्षा देकर उसके जीवन की समस्या का समाधान नहीं सुलझा सकता। तत्व ज्ञान और मनोविज्ञान मनुष्य के स्वभाव को बदल नहीं सकते, उसके स्वभाव में सुधार भी नहीं ला सकते। यह सिर्फ परमेश्वर ही हमारे जीवन को बदल सकता है और इसके लिए मुझे और आपको उसके वचन पर चलना है। सवोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 पद में आगे वह कहता है, जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता। टहनी के मुड़ जाने से पेड़ झुक जाता है। हम जीवन में पुराना स्वभाव लेकर के आते हैं। हम शिक्षा ग्रहण करके जीवन सुधारने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, परंतु प्रभु यीशु कहता है योहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसके 6 पद में, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हमने कभी सोचा था कि शिक्षा जीवन के समस्याओं का समाधान कर देगी, परंतु ऊंची शिक्षा वरन संपूर्ण शिक्षा विचारकों की समिति में अवलोकन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विद्रोह और अनैतिकता का कारण है कि युवा वर्ग अधिक जिज्ञासु हैं और अपने संसार में राजनीति तथा जानकारियों में अधिक रुचि रखते हैं। मैं मानता हूं कि आज मनुष्य संसार में होने वाली सब भयानक बातों को जानते हैं, समाचारों में दुनिया के कोने कोने के समाचार सुनाए और दिखाए जाते हैं। आज संसार की घटनाओं की जानकारी पहले से अधिक है। कभी चुनाव के परिणाम 6 दिन बाद आते थे, परंतु आज चुनाव से पूर्व ही परिणाम सामने आ जाते हैं। अतः मैं मानता हूं कि युवा वर्ग के पास बहुत अधिक जानकारी है, परंतु मैं यह नहीं मानता कि अधिक जानकारियों के कारण हमारे स्कूल कॉलेजों में सुधार आ रहा है। आज भले ही स्थिति अलग है, भले को बुरा और बुरे को भला कहा जा रहा है। हमें सच्चाई का सामना करना है। शिक्षा जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है, न ही मनोविज्ञान समाधान कर सकता है। कई बार मनोवैज्ञानिक बाइबल का संदर्भ ऐसे देते हैं जैसे कड़वी गोली पर चीनी की परत चढ़ाई जाती है, और ऐसा दिखाते हैं कि वह बाइबल का विचार है। मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर का वचन ही है जो जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई आसान समाधान नहीं है। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में समय लगता है, परिश्रम करना पड़ता है और मस्तिष्क का पसीना निकल आता है। ओह, विश्वासियों में इसकी कैसी घोर आवश्यकता है। आज कोई भी अपने मस्तिष्क का पसीना परमेश्वर के वचन के लिए बहाना नहीं चाहता है। हर एक इंसान आराम से सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन में शांति आनंद देखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहता। और यही कारण है कि मनुष्य आज अपने जीवन में अशांति को प्राप्त करता है। सुलेमान ने देखा कि बुद्धि और तत्व ज्ञान से जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जिसे आज आप भी देख सकते हैं और देख रहे हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 1:16 में लिखा है, मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मेरे प्रियो, मेरे विचार में सुलेमान अन्यों से कहीं अधिक बुद्धिमान था, अतः वह घमंड और अहंकार से भरा हुआ था। 1 कुरिन्थियों की पत्री 8:1 में पौलुस कहता है कि ज्ञान घमंड से भर देता है। मनुष्य जब देखता है कि वह अन्यों से अधिक शिक्षित है तो उसे घमंड हो जाता है। स्मरण रखें कि शिक्षा अनुभव पर आधारित है और अनुभव विश्वास योग्य नहीं होता है। अनुभव को परमेश्वर के वचन से परखना आवश्यक है। आज दुर्भाग्य से अनेक जन परमेश्वर के वचन को अपने अनुभव से परखते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपका अनुभव परमेश्वर के वचन के विपरीत है तो आपका अनुभव सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी भी गलत नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। वह मुझे और आपको जानता है और उसने मुझे और आपको बनाया है। क्या आप उसे गलत ठहरा सकते हैं? जी नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार उसके अनुभव को प्राप्त करें। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं और यही कारण है कि हम भी इस पृथ्वी के नीचे की बातों को स्मरण करके जीवन जीते हैं, और तब सुलेमान की तरह हम भी कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। इस संसार में परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए ठहराया है कि हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके उन आशीषों को ग्रहण करें जिसने मुझे और आपको दिया है। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा तो उसने उन्हें आशीषित किया और उन्हें कहा कि तुम पृथ्वी में फलो फूलो और भर जाओ। उन्हें श्रापित नहीं किया परंतु आशीषित किया। आज वह चाहता है कि हम फिर से उस आशीष को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए ठहराया है। आज हम परमेश्वर के वचन पर समय व्यतीत करें, उसका मनन चिंतन करें, और आप निश्चय जानेंगे कि आप व्यक्तिगत रीति से उन आशीषों को प्राप्त करेंगे। आपके परिवार में आशीष होगी, आपके बच्चों में आशीष होगी, और इतना ही नहीं, आप शांतिपूर्ण जीवन भी जी सकेंगे। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के निकटता में ला करके जांचें और देखें कि क्या मैं घमंड तो नहीं कर रहा हूं अपने पद पर, अपने शिक्षा पर या किसी और अन्य बातों पर। यदि ऐसे कुछ मेरे जीवन में है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर ना हो, हम परमेश्वर के वचन पर आश्रित हों। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए ताकि आज हम इस बात को अपने जीवन में ले सकें और अपने ज्ञान के अनुभव के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुभव के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम मनुष्यों को रचा है ताकि हमारे जीवन के द्वारा आप महिमा पाएं। यद्यपि कि हम कई बातों को इस संसार में रह करके नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप हमें अपने जीवित वचन के द्वारा समझाते और सिखाते हैं ताकि हम आपसे प्रेम कर सकें, आपके उन आशीषों को ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में आज के वचन को सुना है, पिताजी आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें, वचन को सीखने और समझने में उनकी सहायता करें, ताकि हर एक जीवन, हर एक परिवार आपकी निकटता में आ सके और जानने पाए कि आपने उन्हें रचा है, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं और आप उनके हर एक जरूरतों को पूरा करने में तत्पर हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमें सिखाएं, समझाएं और बलवंत करें। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आज के अध्ययन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में जब हम फिर से आपके वचन में से सीखते हैं, आप हमारे साथ हो, हमारे सहायक हो। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य अपने जीवन में एक सही निर्णय लिया है। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सब प्रभु की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास घुल सकेंगे।